अग्रहार में मासिक धर्म से पीड़ित और बिस्तर पर असहाय पड़ी उनकी रुग्णा पत्नी और कुछ कौओं और गिद्धों के अलावा कोई प्राणी नजर नहीं आ रहा था। कहीं से पूजा पाठ अथवा कर्म कांड की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। एक भयावह और अशुभ चुप्पी जैसे सारे क्षेत्र पर छा गई थी। सात घर पड़े एक मृत मानव का सब बड़ा सर रहा था। उससे निकल रही महादुर्गंध जैसे सांसों में बसी जा रही थी। घर घर की छत पर गिद्ध बैठे थे और ये सब बातें प्राणिसाचार्य को अशांत और परेशान कर रही थी। वे जब देवघर में घुसे तो उन्होंने देखा कि अपशकुन की तरह चक्कर खाकर एक चूहा अपनी पीठ के बल गिरा और वहीं मर गया। उन्हें बहुत घृणा हुई। उन्होंने उसकी दुम से उसे उठाया और बाहर बैठे एक गिद्ध के सामने फेंक दिया। तपती दोपहर के शमशान से सन्नाटे में आसमान की तरफ वे अपनी आंखें नहीं उठा पा रहे थे। गिद्धों को उड़ाने के असफल प्रयत्न के बाद वे घर के भीतर चले गए। भूख उन्हें बहुत सता रही थी और उसे अधिक सह पाने में वे असमर्थ हुए जा रहे थे। उन्होंने अपनी धोती के एक कोने में कुछ केले बांध लिए, स्नान किया, नदी पार की और एक वृक्ष की छाया में बैठकर उन्हें खाने लगे। उनकी भूख कुछ शांत हो गई। उन्हें याद आया कि इस प्रकार के अंधेरे में चंद्री ने अपने गोद से केले निकालकर उन्हें खिलाए थे। क्या उन्होंने किसी करुणा के वश होकर चंद्री से भोग किया था? इसमें संदेह है। वह तो थी किसी चीते के समान चिंघाड़ती उनके शरीर की कामुकता की भावना, जो कि करुणा के रूप में अपने को प्रस्तुत कर रही थी। दया और संवेदना की भावनाओं के रूप में जो अब तक सदाचार के बंधनों से कसी हुई अवस पड़ी थी। चंद्री की छातियों के एक स्पर्श से ही उनके अंदर का जानवर अपना स्वाभाविक और आक्रामक रूप दिखलाने लगा। उन्हें नारणप्पा के शब्द याद आ रहे थे, देखें कि कौन जीतता है, आप या मैं। आचार्य जी, किसी मत्स्यगंधा सी खुशबू फैलाने वाली मछुआरे से लिपटकर सोइए। नारणप्पा ने इस सिद्धांत को भी व्याख्यायित किया था कि किस प्रकार हमारे सब कर्मों के परिणाम विपरीत निकलते हैं। नारणप्पा के कारण नहीं, लेकिन उनके अपने कारण, उनके हट के कारण, उनके कर्मों के कारण इस अग्रहार का समस्त जीवन उलट पुलट गया। उन्होंने सुन रखा था कि एक नौजवान लड़का उनसे शकुंतला के वर्णन को सुनकर किस प्रकार नदी के किनारे गया और वहां उसने एक छोटी जाति की लड़की से भोग किया। अब उसकी पहचान के लिए आचार्य की कल्पना उनके मन में उन सब छोटी जाति की लड़कियों को खींच लाई जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी ना था। कल्पना में ही आचार्य जी ने उन्हें निरावरण किया और उनके अंग प्रत्यंग को देखकर पहचानने की कोशिश की। कौन थी वह? कौन हो सकती है वह? अरे हाँ, बिल्ली, वही बिल्ली। मिट्टी के रंग की उसकी छातियों को याद करके, जैसे कि सोच विचार तक में पहले कभी नहीं हुआ था, उनका शरीर उत्तेजित हो उठा। उन्हें अपनी इस कल्पना पर शर्म आई। नारणप्पा ने मजाक करते हुए एक बार कहा था, अपने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए वेद और पुराणों को बिना समझते हुए उनमें वर्णित भावावेशों की उपेक्षा करते हुए उन्हें पढ़ना चाहिए। उसकी करुणा और अनुकंपा में और उसकी विद्या और ज्ञान में कहीं कोई एक विस्फोटक चिंगारी थी जो कि दूसरों की जड़ता और मूढ़ता में नहीं थी। अब उनके अंदर का घरेलू जानवर की तरह पला हुआ चीता अपने दांत दिखाता हुआ, गुर्राता हुआ बाहर निकलता आना चाहता था। एक नए अनुभव के लिए बेली के स्तनों से खेलने के लिए उनके हाथ खुजलाने लगे। उन्हें लगा कि उनमें अभी तक जीवन का अभाव था। वे वही करते रहे थे जो सब करते हैं, उन्हीं पुराने मित्रों को दोहराते रहे और कोई अनुभव प्राप्त नहीं कर सके। अनुभव का अर्थ होता है खतरा मोल लेना, हमला करना, कोई ऐसी बात करना जो पहले कभी न की हो, जैसे जंगल के अंधेरे में किसी से लिपट जाना। अब तक वे यही सोचते रहे थे कि मन की इच्छाओं की पूर्ति को ही अनुभव कहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि अनुभव का अर्थ है किसी अदृश्य में, अकथ्य स्थिति में, जीवन में किन्हीं उरोजों का अचानक संस्पर्श हो जाना। जिस प्रकार उन्होंने एक स्त्री के घनिष्ठ आलिंगन को पाया है, क्या नारणप्पा उसी तरह अंधकार में और बिना किसी चेष्टा के प्रभु के चरणों को छू सका था? धीमी पड़ रही वर्षा की बूंदों की प्रतिक्रिया स्वरूप धरती के नरम दबाव से कठोर बीज भी अंकुरित होता है। यदि कोई दुराग्रही हो तो उसका आवरण सूखकर और भी कठोर हो जाता है। नारणप्पा ऐसा ही एक दुराग्रही व्यक्ति था, अब मरकर सड़ रहा है। चंद्री के संपर्क में आने तक वे स्वयं भी नारणप्पा की तरह दुराग्रही थे। उसके मनोबल के सामने अपना मनोबल उन्हें खड़ा कर रखा था। जिस स्वाभाविक जिस स्वाभाविकता से इनकी शारीरिक लालसाएं बिफर कर उन पर छा गईं, और जबकि वे सोचते हैं कि कभी से उनका त्याग कर चुके हैं, ऐसा क्यों नहीं संभव कि इच्छा के व्यक्त किए बिना भी परमात्मा का संस्पर्श उन्हें मिले। चंद्री अब इस समय कहाँ है, क्या उन्हें कोई कष्ट ना पहुँचे? इस उद्देश्य से नारनप्पा के सबके पास जा बैठी है। कैसे वह उस भयानक दुर्गंध को सह रही होगी, उन्हें चिंता सताने लगी। वे नदी में कूद पड़े और इस विस दिशा में तैरने लगे। काश उन्होंने सोचा कि मैं हमेशा यहीं रह सकूं, हमेशा नदी में तैरता रहूं। उन्हें अपने शैशव के दिनों की याद आई, जब वे अपनी माँ से आंख बचाकर तैरने के लिए नदी की ओर भाग जाते थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कितने वर्षों के बाद बाल्यकाल की इच्छाएं अब उनमें जन्म ले रही हैं। माँ को कोई संदेह ना हो, इसलिए तैरने के बाद वह रेत में लेटे रहते थे और अपने को बिल्कुल सुखाकर ही घर लौटते थे। क्या सूर्य द्वारा तपाई हुई रेत में ठंडे पानी में तैरने के बाद लेटने की बराबरी करने वाला कोई सुख है? लौटकर अग्रहार जाने की उन्हें इच्छा नहीं हो रही थी। वह नदी से निकलकर किनारे पर आ गए और फैली रेत पर लेट गए। दोपहर की धूप में उनका शरीर जल्दी ही सूख गया और पीठ जलने लगी। उन्हें अचानक एक विचार आया और वे उठ खड़े हुए, किसी एक ऐसे पशु की तरह जो धरती को अपनी थूथन से सूंघ सूंघ कर आगे बढ़ता है। जंगल में वे उस विशेष स्थान की ओर बढ़े जहाँ उन्होंने चंद्री से प्रेम किया था। भरी दोपहर में यहाँ झुटपुटा अंधेरा था, झाड़ियों में तो अंधकार काफी घना था, एक हल्के से गुंजन से बोझिल अंधकार। वे उस जगह पर आ खड़े हुए जहाँ की उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया था। हरी घास पर उन दोनों के शरीरों के दबाव और आकार अभी भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे वहीं बैठ गए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने घास के कुछ पौधे जड़ से उखाड़े और उन्हें सूंघा। मृत्यु की दुर्गंध से ग्रस्त अग्रहार से वे आए थे, इस कच्ची मिट्टी से सनी घास की जड़ों की गंध उन्हें मद से भरने लगी। मुर्दे की तरह जमीन में चोंच मारते हुए, उसे खनोचते हुए उनके हाथ जो कुछ भी लगा उन्होंने उसे उखाड़ा और उसे सूंघा। उनके लिए केवल किसी वृक्ष की ठंडी छाह में बैठ भर पाना अपने में एक मूल्य, एक उपलब्धि बन गया था। होना मात्र होना भर होना, प्राणपन से होना, तपिस में, ठंडक में, घास पर, हरियाली पर, फूलों की गंध में, किसी विरह की अनायास पीड़ा में, धूप में, छाया में, इच्छाओं और मूल्यों से असंपृक्त होकर, किसी भी विशेष आसक्ति के बिना, जब कहीं अदृश्य से आवाज आती है यहाँ, तो बहुत धन्यवाद पूर्वक उसका स्वागत करना चाहिए। उतावली में हाथ नहीं फैलाना, ऊपर नहीं चढ़ना, छीना झपटी में नहीं पड़ना चाहिए। चिरायते की बेल का एक छोटा पौधा अचानक उनके हाथों से लगा। उन्होंने उसे उखाड़ने की कोशिश की। बेल की जड़ें काफी दूर तक जमीन में फैल चुकी थी, वे उसे उखाड़ नहीं सके। घास की छोटी छोटी जड़ों की तरह जो जमीन के ऊपरी भाग में ही जमी होती है, चिरायते की बेल की जड़ें नीचे की कठोर भूमि तक पहुंच चुकी थी। वे बैठ गए और दोनों हाथों से बेल को उखाड़ने लगे। लगभग आधी जड़ ही उखड़ कर उनके हाथ में आ गई। उन्होंने उसे सूंघा। उस जड़ में एक विशेष प्रकार की गंध बस गई थी, जो कि वहाँ की तपिस और ठंडक, वहाँ की मिट्टी और ऊपर के आकाश सबको मिलाकर बनी थी। यह गंध उनके अंतर के प्राणों तक जा बसी। एक लालची व्यक्ति की तरह उस जड़ को सूंघते हुए वहाँ बैठे रहे। गंध उनकी नासिका में बस गई, एक मिठास उनके खून में बहने लगी, लेकिन गंध का वह अनुभव शीघ्र ही लुप्त हो गया और उन्हें अतृप्त छोड़ गया। उन्होंने जड़ को अलग रख दिया और जंगल की अन्यान्य गंधों को सूंघने लगे। फिर से वे चिरायती की जड़ की ओर उन्मुख हुए और ऐसा लगा कि उस जड़ में फिर से ताजगी आ गई हो। वे जंगल से बाहर आ गए और विष्णु कांति के फूलों की ओर एक चक देखते रहे। छाया में जड़ी हुई नीलमणियों की तरह वे लग रहे थे और जैसे उन्हें देखना भर किसी वैभव को देखने के समान हो। एक बार फिर से वे नदी में उतर गए और चारों ओर तैरने लगे। पानी में उस गहराई तक वे जा खड़े हुए जहाँ की जल उनकी ठोरी को छूता था। मछलियों के झुंड उन्हें घेर रहे थे और पैर की अंगुलियों में, बंगलों में, पसलियों में मछलियों के संस्पर्श से उन्हें सिहरन हुई। किसी शरारती बच्चे की तरह पुलक कर प्रणेशाचार्य ने कहा, आहा, और फिर नदी में तैरने लगे। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पर निकल आए और शरीर के सूखने तक धूप में खड़े रहे। तभी उन्हें ध्यान आया कि अपनी पत्नी को मार देने का वक्त हो गया है और वे जल्दी जल्दी चलकर अग्रहार आ गए। जैसे ही उन्होंने फिर से कौओं और गिद्धों की पंक्तियों को देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वे घर पहुंचे और पाया कि उनकी पत्नी का चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। उन्होंने उसे पुकारते हुए कहा, इधर देखो, इधर देखो, क्या इसका ताप बढ़ गया है? मासिक धर्म से ग्रस्त इस अपवित्र स्त्री को मैं कैसे छू सकता हूँ? लेकिन तुरंत ही उन्होंने आत्मग्लानी से अपनी झिझक को वश में करते हुए कहा, छी। उन्होंने पत्नी के माथे पर हाथ रखा और हाथ को एकदम आर्षान्वित होकर झटके से वापस खींच लिया, यह न जानते हुए कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। उन्होंने गीला कपड़ा पत्नी के माथे पर रखा, उसके ऊपर पड़े कंबल को संदेह से उछाया और उसके शरीर की परीक्षा की। उसके पेट के निचले हिस्से की ओर एक गिलटी निकल आई थी। क्या यह उसी प्रकार का ज्वर है जिसने नारनप्पा के प्राण हर लिए थे? जितनी भी जड़ी बूटियों का उन्हें परिचय था, उन्होंने एक सील पर उन्हें रगड़ा, अपनी पत्नी का मुंह खोला और उसमें औषधि डालने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी औषधि उनके गले के नीचे नहीं उतर सकी। यह कैसी नई परीक्षा है उनकी? इधर उधर घूमते हुए वे सोचते रहे, कौओं और गिद्धों की आवाजें सही नहीं जा रही थी। दुर्गंध उन्हें पागलपन के किनारे तक ले आई थी। वे भागकर घर के पिछवाड़े में आ गए। वहां समय के व्यतीत होने से बेखबर होकर झुटपुटे अंधेरे में पड़े रहे। संध्या उतर आई। कौओं और गिद्धों को उड़कर चले जाते देखकर उन्हें कुछ संतोष हुआ और अपने को कोसते हुए वे घर के अंदर फिर घुसे कि अपनी बीमार पत्नी को इतने समय तक वे अकेली छोड़ गए थे। डरते हुए उन्होंने कंदील जलाया और पत्नी को पुकारा, इधर देखो। कोई उत्तर न मिला। एकाएक ऐसा लगा जैसे यह चुप्पी मुखरित हो चुकी है। उनकी पत्नी ने अचानक एक लंबी चीख ली जो उन्हें अवाक छोड़ गई थी। वह कर्कश दया की भीख मांगती हुई चीख कहीं उनके मर्म तक को छू गई और वे कांप उठे। चीख चिल्लाहट जैसे खत्म हुई, लगा कि आकाश में बिजली के कौंधने के बाद का घना अंधकार सा छा गया हो। वहां अकेले खड़े रहने का साहस उनमें नहीं रहा। इससे पहले कि वे सचेत होकर जान पाते कि वे क्या कर रहे हैं, वे नारनप्पा के घर की ओर चंद्री 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 पुकारते हुए भाग उठे। लेकिन वहां भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। चुप घुप अंधेरा था। उन्होंने बीच के कमरे में फिर रसोई घर में खोजा, कोई भी वहां नहीं था। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के कमरे की ओर जाने लगे, उन्हें ध्यान आया कि वहां तो सब पड़ा है। अचानक एक भय ने उन्हें जकड़ लिया, वैसे ही जैसे कि वे बाल्यकाल में पिशाच के भय से किसी अंधेरे कमरे में घुसने से डरा करते थे। भागते हुए घर लौटे। उन्होंने अपनी पत्नी का माथा छुआ तो वह एकदम सर्द ठंडा पड़ चुका था। उस आधी रात के वक्त हाथ में एक कंदील लिए हुए दूसरे अग्रहार की ओर चल दिए और वहां सुवर्णाचार्य के घर में जा घुसे। उनके पीछे नारायण नारायण कहते हुए वे चार ब्राह्मण आ रहे थे, जो दासाचार्य का दाह संस्कार करके और सिरों पर गीली धोतियां लपेटे अभी लौटे ही थे। उन ब्राह्मणों को अपने साथ में वे ले आए और अपनी पत्नी के सब को शमशान ले गए। पूरे कर्म कांड के साथ उसका दाह संस्कार पौ फटने से पहले ही समाप्त कर दिया। जैसे कि वे स्वयं से बोल रहे हों, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, अग्रहार में संस्कार की प्रतीक्षा में एक और शव भी पड़ा है, लेकिन उसकी प्रारब्ध के बारे में निर्णय गुरुजी के मठ में ही होगा। अब आप पधार सकते हैं। वे ब्राह्मण प्राणेशाचार्य को चिता पर अपनी पत्नी को जलता हुआ देखते हुए छोड़कर चले गए। जो पत्नी किसी भी दिन हड्डियों के एक मुट्ठी भर कंकाल से ज्यादा न थी और केवल उनकी जीवन तपस्या की प्रतीक थी, और अब वह कंकाल भी भस्म हो जाने को था। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की और तब तक रोते रहे जब तक कि उनके शरीर और मन की क्लांति मानो एकदम दूर नहीं हो गई। मठ में आराधना का सहभोज समाप्त होने के बाद कोई भी ब्राह्मण अपने मुंह से कोई भी अमंगल बात बोलना नहीं चाह रहा था। चुपचाप उन्होंने आचमन लिया, तरह तरह के भोज्य पदार्थ और हलवा खाया। गुरु से एक एक आना दक्षिणा में भी मिला। लक्ष्मणाचार्य को बहुत निराशा हुई। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यह कैसे कंजूस संन्यासी है, एक आने के सिक्के को धोती की लांग में टूंग लिया। न इसके कोई बाल बच्चे हैं और न परिवार, फिर भी देखो किस तरह जैसे दांतों से धन दौलत को पकड़े हुए हैं। सहभोज के बाद मठ के मुख्य आंगन में ठंडे फर्श पर ब्राह्मण बैठे और उनके बीच में कुर्सी पर गुरुजी आ विराजे। गुरुजी ने कासाय वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में तुलसी माला और माथे पर चंदन का तिलक लगा हुआ था। एक गोल मटोल लाल गालों वाली गुड़िया की तरह अपने छोटे छोटे पांव एक दूसरे से सहलाते हुए उन्होंने सामान्य प्रश्नों से शुरुआत की। प्राणेशाचार्य स्वयं क्यों नहीं आए? वे कैसे हैं? वे अच्छे तो हैं? हमने उन्हें बुलवा भेजा था, क्या यह खबर उन तक नहीं पहुंची? गला साफ करते हुए गरुड़ाचार्य ने सारी स्थिति का बखान कर दिया। गुरुजी ने प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक सुनी और अंत में निश्चयात्मक स्वर से कहा, यद्यपि नारनप्पा ने ब्राह्मणत्व को तिलांजलि दे दी थी, लेकिन ब्राह्मणत्व ने उसका त्याग नहीं किया था। इसका अर्थ यही है कि उचित और पूर्ण कर्मकांड के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, लेकिन दोषों का परिहार भी आवश्यक है। उसकी सारी जायदाद चांदी और सोने सहित इस मठ को भगवान कृष्ण को अर्पित कर देनी होगी। गरुड़ ने कुछ साहस दिखाया, धोती से अपना मुंह पोछा और बोला, हे महाराज, उसके और मेरे पिता के बीच के पुराने कलह की बात से आप परिचित ही हैं। उसके बगीचे के सुपारी के 300 पेड़ मुझे मिलने चाहिए। लक्ष्मणाचार्य ने बीच में ही बाधा देकर कहा, आहा, कहा और बोला, हे महाराज, क्या इस विषय में न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है? जैसा कि आपको मालूम है, नारनप्पा की स्त्री और मेरी स्त्री दोनों सगी बहनें थी। गोल और लाल मुँह वाले स्वामी जी के मुख पर क्रोध उभर आया। किस प्रकार के नीच हो जी तुम लोग? यह परंपरा से चला आ रहा नियम है कि अब अनाथ सब अनाथ संपत्ति भगवान की सेवा में अर्पित कर दी जाती है। इसे कभी भूलने की कोशिश मत करना। यदि हम दाह संस्कार की अनुमति ना दें तो? उन्होंने गरज के साथ कहा, तुम लोगों को स्वयं अग्रहार छोड़कर चला जाना होगा। दोनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी भूल स्वीकार की और उसके लिए क्षमा मांगी। बाकी सब ब्राह्मणों के साथ उन्होंने स्वामी जी के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया। जब वे लौटने के लिए उठे तो उन्होंने गरुड़ाचार्य को गायब पाया। देखा कि मठ की अटारी में ज्वारा तिरेक से वे लेटे पड़े हैं। उन्होंने कुछ खाया पिया भी तो नहीं था। ब्राह्मणों को तुरंत लौटकर सबका अंतिम संस्कार करने की जल्दी थी। गरुड़ाचार्य को वहीं छोड़कर उन्होंने अपनी राह पकड़ी। अपनी पत्नी के संस्कार के बाद आचार्य अग्रहार नहीं लौटे। उन्होंने घर के संदूक में पड़े हुए सुनहरी गोट वाले 15 सालों की भी परवाह नहीं की और न 200 रुपयों की और न ही मठ द्वारा दी गई सोने से मढ़ी तुलसी की माला ले आने के बारे में कुछ सोचा। जहाँ पांव चले जाए उधर ही चलने के विचार से वे पूर्व की ओर मुख करके चलने लगे। सुबह के सूरज की धूप घने जंगल के दरख्तों से छनकर धरती पर तरह तरह के आकार बना रही थी। थककर घिसटते हुए पांवों से प्राणेशाचार्य ने ना तो दिशा की और ना ही उस स्थान के बारे में सोचा जिसकी ओर वे जा रहे थे। प्रायः एक क्षण के लिए उनके मन में यह पश्चाताप भी हुआ कि भस्म हुई राख और अंजली अस्थियों को उठाने के लिए रुकने तक का धैर्य उनमें नहीं था, ताकि अपनी पत्नी के फूलों को वे बहती हुई नदी में बहा देते। उन्हें यह दुखदायी विचार भी सताने लगा कि उन फूलों को कुत्ते और लोमड़ियाँ पद्दलित कर रहे होंगे, लेकिन यह सोचकर उन्होंने अपने को सांत्वना दी कि वे नितांत स्वतंत्र होकर घर बार सब कर्तव्य सब ऋण आदि पीछे छोड़कर चले आए हैं। मैंने कहा था कि मैं वहां तक जाऊंगा जहां तक कि मेरे पांव मुझे ले जाएंगे। अब मुझे अपने उसी निर्णय के अनुसार चलते रहना चाहिए। ऐसा सोचते हुए और मन में एक बार के संतुलन को बनाए रखकर वे बढ़ते रहे। इससे पहले कि जब कभी उनका मन उद्विग्न होता था तो वे उसे एकाग्र करने के लिए अच्युतानंद गोविंदा के नाम का स्मरण करते थे। अब भी एक बार वैसा ही करने की उनकी इच्छा हुई। उन्हें योग के पहले सिद्धांत के बारे में स्मरण हो आया, युगश्चित्व वृत्ति निरोध, लेकिन नहीं, यह उन्होंने मन ही मन कहा, मंत्र जाप नाम स्मरण की झूठी संतावनों को दूर कर दो, एकाकी अपने पैरों पर खड़े रहो, मन को प्रकाश और छाया के उन आकारों की तरह होने दो जो कि धूप के वृक्षों से छिनकर आने से स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं। आकाश में प्रकाश, वृक्षों के नीचे छाया और धरती पर आकार, यदि सौभाग्य से पानी की बौछार हो जाए तो इंद्रधनुष की मरीचिका भी। मनुष्य का जीवन इसी धूप के समान होना चाहिए। मात्र एक बोध, मात्र एक विशुद्ध आश्चर्य, निश्चलता में तिरते हुए और जैसे कोई बड़े फैले हुए पंखों वाला पक्षी आकाश में तिरता है। पांव चलते हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं। काश कि हम नितांत इच्छा रहित हो सकते, तभी जीवन ग्राही हो सकता है, अन्यथा इच्छा के कड़े छिलके में वह सूख जाता है, मुरझा जाता है और कंठस्थ किए हुए हिसाब के पहाड़ों के पुंज की तरह हो जाता है। वह कणक अशिक्षित संत, उसका मन एक स्वतः जन्मे बोध की ही तरह था, एक आश्चर्य की तरह। तभी वह ऋषि बन सका और यह प्रश्न पूछ सका, तुम चाहते हो कि मैं वहां केले खाऊं जहां एक भी केला नहीं है? कहां जाकर मैं ऐसा कर सकता हूं? परमात्मा तो सर्वव्यापी है, मैं क्या करूं। प्रणिसाचार्य ने मन में सोचा कि परमात्मा उनके लिए अंकों की कंठस्थ पहाड़ों की तरह सो गया है, एक स्वाभाविक बोध या आश्चर्य के रूप में, जैसा कि वह कनक ऋषि के लिए था नहीं रहा। एक बार ईश्वर से नाता तोड़ लेने के बाद पुराने सब ऋणों से, गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इन सबसे अपने को मुक्त मान लेना चाहिए था तथा सब सामाजिक बंधन काट कर रहना चाहिए। इसलिए यह निर्णय ठीक और उचित है कि जिधर पांव ले चले चलते रहना चाहिए, इस पथहीन वन में इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। प्राणेशाचार्य की इस विचारधारा में एकाएक बाधा उपस्थित हुई, लेकिन थकन, भूख और प्यास से विवश होने पर ऐसा लगा कि आत्म प्रवंचना की एक दूसरी गुहा में वे प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि यही निश्चय करके ही वे चले थे कि जिधर पाँव ले जाएंगे उधर ही उनका गंतव्य होगा, यह कैसे हुआ कि वे ढोरों के गले में बंधी काठ की घंटियों की आवाज और चरवाहों द्वारा छेड़ी गई बांसुरी के सुरों को सुनते हुए इतनी दूर तक चलते आए हैं। निर्णय जो कुछ भी हुआ हो, उनके पाँव मनुष्यों की बस्ती के नजदीक ही उन्हें खींच लाए हैं। उनके लोक की, उनके स्वातंत्र्य की यही सीमा है। स्पष्ट है कि मानव संपर्क की परिधि के बाहर नहीं रहा जा सकता, लोक कथाओं के व्रत सन्यासी की कोपिन की तरह ही। कोपिन को चूहे ना काटें, एक बिल्ली को पालना पड़ा। बिल्ली को दूध पिलाना होगा, एक गाय रखनी पड़ी। गाय की देखभाल के लिए नारी की आवश्यकता महसूस हुई और विवाह कर लिया। इस कार्य कारण के चक्कर में संन्यास धर्म को ही तिलांजलि देनी पड़ी। प्राणिसाचार एक बड़े कटहल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। इस सारी समस्या को मुझे पूरी तरह समझ लेना चाहिए। भविष्य में मेरा व्यवहार विभिन्न होगा और अपने को रंच मात्र भी धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। पत्नी के सबके दाह संस्कार के तुरंत बाद मैं क्यों वहां से भाग आया हूं? अग्रहार में असीम ठोस दुर्गंध फैली हुई थी। इस दुर्गंध को सहने का मुझमें साहस नहीं था। एक तो यही खास कारण है, प्रत्येक सांस उसांस में उस दुर्गंध का बस जाना, उसमें पैदा हुई असौच की भावना निश्चय ही। लेकिन आगे क्या? जो ब्राह्मण मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे उनके सम्मुख जाने से मैं कतरा क्यों रहा था, भला क्यों? प्राणिसाचार ने थकावट को दूर करने के लिए टांगे फैलाई और इस प्रतीक्षा में रहे कि उनके मन की विवेचन की शक्ति फिर से लौट आए। अनजाने में ही एक बछड़ा उनके समीप आकर खड़ा हो गया। बछड़े ने अपना मुख उठाया और उनकी गर्दन को सूंघा। उसकी गर्म सांस उनकी ग्रीवा पर पड़ी। बछड़े की दयाद्र आंखों ने मानो उन्हें कहीं भीतर द्रवित कर दिया और उनमें भावनाओं का एक ज्वार उठ आया। उसके गल कंबल को वे उंगलियों से सहलाने लगे। बछड़े ने अपनी गर्दन को ऊंचा उठाया और उनके ज्यादा नजदीक खिसकाया, अपने रोमांचित शरीर को उनके हस्तस्पर्श के लिए अर्पित कर दिया। बछड़ा अपनी गुनगुनी खुरदरी जबान से उसके कानों और गालों को चाटने लगा। सुरसुराहट होने से और बछड़े के संग खेलने की इच्छा से प्राणिसाचार उठ खड़े हुए। उसके गले के नीचे हाथ फेरते हुए उन्होंने उघू घू की आवाज लगाई। बछड़ा अपने पिछले पांवों पर खड़ा होकर उन पर कूदने को हुआ, फिर फैली हुई धूप में एक दिशा में भाग खड़ा हुआ और आंखों से फिर ओझल हो गया। प्राणिसाचार्य ने अपने विचारों को फिर समेटने का यत्न किया। वे क्या सोच रहे थे? हाँ, प्रश्न यह है कि मैं लौटकर उन ब्राह्मणों से क्यों नहीं मिला। इस विचार बिंदु पर मन टिक नहीं रहा था। उन्हें भूख भी सताने लगी थी। किसी पास के गांव में जाकर खाने पीने का प्रबंध करना चाहिए। वे उठे और गायों के खुड़ों के निशान और गिरे हुए गोबर की दिशा में बढ़ चले। प्रायः घंटा भर चक्कर लगाने के बाद वह किसी देवी के मंदिर के पास पहुंचे। मतलब यह कि यह अग्रहार ब्राह्मणों का नहीं है। वे आगे बढ़े और गांव के किनारे के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धूप पड़ रही थी, वृक्ष की छाया के भी नीचे तपिस लगने लगी थी और उन्हें प्यास भी लगाई थी। यदि कोई ग्वाला ही उन्हें देख ले तो फल और दूध लाके उन्हें दे दे। तालाब की ओर भैंसों को हांकते हुए एक ग्वाले ने हाथ से छाया करते हुए धूप से आंखों को बचाते हुए उन्हें देखा भी, नजदीक आया और पास आकर खड़ा हो गया। पान और सुपारी की खूब चबाई हुई गिलौरी के उसके मुंह में भरी थी। शानदार मूछे थी, सिर पर चारखाने के कपड़े की पगड़ी लपेट रखी थी। प्राणिसाचार्य ने अनुमान लगाया कि वह शायद गांव का मुखिया होगा, क्योंकि मुंह पान की पीक से भरा हुआ था। पीक बह न जाए इसलिए उसने अपना मुख ऊंचा किया और हाथों के सहारे से ही पूछना चाहा कि इस अपरिचित व्यक्ति का किधर कहां से आना हुआ है। यदि मालूम होता कि वे स्वयं प्राणिसाचार्य हैं तो वह ग्वाला मुंह में पान और पीक भरे इस बाहर इस प्रकार खड़ा न रहता और निरादर सा दिखलाता हुआ इस प्रकार इशारे से उसे कुछ पूछना नहीं चाहता। जब कोई अपने अतीत अपने इतिहास से संबंध तोड़ लेता है तो दुनिया तो दूसरी की भांति तुम्हें एक सामान्य ब्राह्मण मात्र ही मानेगी। इस विचार से वे कुछ विचलित हुए। कोई उत्तर ना मिलने पर ग्वाले ने कुछ दूर जाकर मुंह से पीक को थूका और कपड़े से अपने मूंछों पर कुछ गिरे रस को पोंछता हुआ लौटा। आचार्य की ओर उत्सुकता से देखते हुए नम्रता से पूछा, महाराज जी किस तरफ जा रहे हैं? प्रणिषाचार्य को कुछ तसल्ली हुई कि उस ग्रामीण ने कुछ आदर दिखलाया और सीधे यह पूछकर अपशकुन नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हैं। कोई स्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ उन्होंने उत्तर दिया, यूं ही उधर और हाथ से भी इसी दिशा की ओर अस्पष्ट संकेत करते हुए माथे का पसीना पोंछ लिया। यह भगवान की कृपा थी कि ग्वाले ने उन्हें पहचाना नहीं। क्या महाराज जी घाटी के उस पार से आए हैं? ग्वाले ने कौतूहल से फिर प्रश्न किया। प्रणेशाचार्य को झूठ बोलने की आदत नहीं थी, उन्होंने फिर अस्पष्ट से स्वर में कहा, हाँ कह दिया, दक्षिणा के लिए निकले होंगे। प्रणेशाचार्य को सिर नीचा कर लेने की इच्छा हुई। इस भले ग्वाले ने उन्हें भिक्षा और दक्षिणा पाने के लिए घर से निकला ब्राह्मण मान लिया है। वे अपना कुल तेज और सामर्थ्य गंवा चुके हैं और हर किसी को दक्षिणा लेने के लिए निकले ब्राह्मण से ही दिखलाई पड़ते होंगे। विनीत होने की शिक्षा का यह पहला चरण था। उन्होंने स्वयं से कहा, अब अपना उन्नत भाल झुका ही लेना चाहिए और किसी प्रकार पहले सा हाँ शब्द फिर उच्चारित किया। किसी अजनबी के सम्मुख अपनी इच्छा अथवा आवश्यकता के अनुसार अपना व्यक्तित्व बना लेने की शक्ति से उन्होंने अनुभव किया कि उनकी स्वतंत्रता की परिधि और बढ़ गई है। यहाँ आसपास किसी ब्राह्मण का घर नहीं है। कुछ उपेक्षा से प्रणेशाचार्य ने उत्तर में केवल ओह ही कहा। ब्राह्मणों का अग्रहार यहाँ से कोई 10-12 मील की दूरी पर है। ऐसा यदि आप गाड़ियों वाली सड़क से जाएं तो अग्रहार और भी दूर पड़ेगा। पगडंडी के रास्ते वह कहीं करीब है। ठीक है, यहाँ एक कुआं है, मैं आपको एक घड़ा दे देता हूँ, आप पानी खींचकर स्नान कर लीजिए। मैं आपको चावल और कुछ दाल भी दे दूंगा। आप ईंटें रखकर चूल्हा बना लें और अपने लिए खाना पका लें। आप जरूर थक गए होंगे बेचारे। यदि आप अविलंब अग्रहार ही पहुंचना चाहे तो भी मुझसे कहिए। गाड़ीवान सिसप्पा अपने संबंधी से मिलने के लिए आया हुआ है। उसकी गाड़ी वापस घर तक खाली हो जाएगी। वह अग्रहार के पास ही रहता है, लेकिन जो कुछ वह बता रहा था मैं नहीं समझता कि आप अग्रहार जाना चाहेंगे। उसने बतलाया कि एक शव 3 दिन रात से वहाँ पड़ा सर रहा है। किसी ब्राह्मण का शव, उफ, सिसप्पा ने कहा था। घनी रात के अंधेरे में उस भले ब्राह्मण की रखेल से सप्पा के पास उसके शव का संस्कार करने में सहायता मांगने के लिए आई थी। ऐसा जान पड़ा कि वह ब्राह्मण पीछे कोई संतान नहीं छोड़ गया। कोई मृत ब्राह्मण बिना संस्कार के कैसे इस प्रकार पड़ा रह सकता है। जब अपनी बैलगाड़ी में उस राह से सप्पा आया था तो उसने बताया कि अग्रहार के घरों पर गिद्ध बैठे और मंडरा रहे थे। हाथों में तंबाकू मसलता हुआ ग्वाला बातें करते हुए सामने ही बैठ गया। सप्पा यही कहीं पड़ोस में ही है। यह सुनकर प्रणेशाचार्य घबराव से उठे। वे नहीं चाहते थे कि सिसप्पा उन्हें इस दशा में देखे। अब ज्यादा देर यहाँ रुकना उनके लिए अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। ग्वाले को देखते हुए उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे कुछ दूध और केले दे सको तो आगे अपने मार्ग पर बढ़ूं। महाराज इसमें क्या बात है, पल भर में लाया। जबकि गांव में कोई ब्राह्मण भूखा हो तो मैं खुद अन्न नहीं ले सकता। इसी से चावल दाल देने की बात आपसे कही, कहकर वह चला गया। प्रणेशाचार्य को लगा मानो वे कांटों पर बैठे हों। यदि सिसप्पा उन्हें देख ले तो क्या होगा। अपने भय के कारण मन में निरंतर छोटे होते हुए उन्होंने चारों ओर देखा। जब मैं सब कुछ त्याग आया हूँ तो मेरे मन में ऐसा भय क्यों, उन्होंने अपने आप से पूछा। यद्यपि बढ़ते हुए त्रास को रोक ना पा सकने के कारण उनकी उद्विग्नता बढ़ रही थी। ग्वाला एक प्याला दूध और केलों का एक गुच्छा लेकर आ गया और उन्हें आचार्य के सामने रखते हुए कहा, ठीक समय पर ही ब्राह्मण महाराज का हमारे गांव में आगमन हुआ है। क्या आप मुझे भविष्य के विषय में बता सकेंगे? अपने लड़के के लिए 100 रुपये खर्च करके मैंने एक दुल्हन ठीक की, लेकिन वह जब से आई है चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है, जैसे कि किसी पिशाचिनी के कब्जे में हो। यदि आप कुछ मंत्र ताबीज दे सकें। आचार्य अपने सदा के अभ्यास की तरह अपने ब्राह्मण कर्तव्य को निभाते हुए कुछ कहने जा ही रहे थे कि उन्होंने अपने मन की लगाम खींचकर उसे एकाएक निश्चल कर दिया। गोकी, मैंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, समाज फिर भी मुझसे चिपचा हुआ है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण मेरे जो जो कर्तव्य बनते हैं उनकी पूर्ति की अपेक्षा करता है। इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अब इस ग्वाले को मैं क्या उत्तर दूं, जिसने इतनी चिंता से एक परिचित को खाने पीने के लिए दूध और केले ला कर दिए हैं। क्या मैं सच सच कह दूं कि मैंने पाप किया है और अपने सब संचित पुण्यों से नितांत वंचित हो गया हूँ, कि मैं ब्राह्मणत्व भी गवा बैठा हूँ, या जो कुछ हुआ है उसी का सही सही वर्णन कर दूं। तभी उन्हें एक सही उत्तर सूझ गया कि झूठ भी नहीं था। आज मैं अपने मंत्र के जाप का प्रयोग करने की दशा में नहीं हूँ। मेरे एक नज़दीकी संबंधी की मृत्यु हो गई है और मुझे अभी तक सूतक है। उन्होंने प्याले से दूध पिया, कपड़े में केले बांधे और चलने के लिए उठ खड़े हुए। यदि आप इसी रास्ते 10-1 मील चलें तो मेलिगे नाम का एक स्थान आएगा। वहाँ के मंदिर में आज, कल और परसों रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाएगा। वहाँ पहुँच जाएं तो अच्छी खासी दक्षिणा भी मिल जाएगी। यह कहकर फिर से पान चबाता और अपनी भैंसों को हाँकता हुआ ग्वाला अपनी राह चला गया। जब वह आंखों से ओझल हो गया तो प्रणिसाचार्य ने फिर से जंगल में प्रवेश किया और पगडंडी पर होकर आगे बढ़ने लगे। उन्हें चिंता सताने लगी कि उनकी समस्या कहीं ज्यादा उलझ गई है। मैंने ऐसे भय का पहले अनुभव नहीं किया। पहचाने जाने का भय, पकड़े जाने का भय, यह भय कि अपने अंतर के भेद को मैं दूसरों की आंखों से बचाकर कैसे रख पाऊंगा। मैंने अपनी स्वाभाविक मौलिक निर्भयता खो दी है। कैसे, क्यों? भय के कारण ही मैं वापस अग्रहार नहीं जा सका। इस भय के कारण कि उन ब्राह्मणों की नजरों के सामने मैं जिंदा कैसे रह सकूंगा। हाय यह भीषण चिंता कि जब मेरी गोद में गांठ बांधकर एक झूठ पड़ा है, मैं सांस भी कैसे ले सकूंगा। जंगल की निस्तब्धता जैसे जैसे बढ़ी, उनका धूमिल मन साफ होने लगा। केलों को छीलते और खाते समय वह धीरे धीरे पाँव घसीटते हुए से चलने लगे। ग्वाले से भेंट होने के बाद उनकी समस्या उनके अंतर में बैठ रही थी। किसी भी समस्या से उसके सिर के बालों को पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर सुलटना चाहिए। मूल में जो भी चीज है उसे जलाकर भस्म कर देना चाहिए। वह चीज तो है नारदप्पा, जो कि जीवन भर ब्राह्मणत्व को लात पांव मारता रहा, अभी तक दाह संस्कार की प्रतीक्षा में है। जैसे हर चीज की एक दिन अंत्येष्टि होनी ही है, वही समस्या बनकर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। यह सोचकर कि समस्या का समाधान वे धर्म शास्त्रों में खोज पाएंगे, उन्होंने पुरातन शास्त्रों को पलटा छाना, मारुति की शरण में आए। आखिरकार उस जंगल में, उस अंधेरे में वे रुके। पूरी तरह से और ठीक तरह से जान लेने के लिए अपने हृदय को संतुलित करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। यह सब क्या और कैसे हो गया? जब कोई यह जानने की कोशिश करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी पहले देखे गए सपने को दोबारा देखने की कोशिश कर रहा है। उसके स्तनों के अप्रत्याशित संस्पर्श से मैं उत्तेजित हो गया था। अपनी साड़ी के आंचल में बांधे हुए केले निकालकर उसने मुझे खिलाए। भूख, थकान और ऊब, उन्हें निराशा हुई। भगवान मारुति ने उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इन सबसे वे दब से गए। उन्हें भास हुआ कि वे अवांछित रहे हैं। शायद यही प्रभु की इच्छा थी। अब वह घड़ी आ पहुंची थी। वास्तव में कारण यही था। यही एक पवित्र घड़ी थी। न इसके कुछ पहले था और न कुछ इसके बाद होगा। यह ऐसी घड़ी थी जिसमें वह कुछ घटित हुआ जो न पहले कभी हुआ था और न जिसका कोई अस्तित्व बाद में ही रहा। पहले भी रूप रहित थी और बाद में भी रूप रहित। बीच के उस क्षण का ही, उस घड़ी का ही एक मूर्त ठोस रूप था। इसका अर्थ हुआ कि उससे संभोग करने का दायित्व मुझ पर कतई नहीं आता। मैं उस घड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, किंतु उस घड़ी ने मुझसे इतना परिवर्तन क्यों कर दिया है? इस परिवर्तित व्यक्ति के लिए मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं और यही मेरे लिए कष्टकारक है। वह घड़ी मात्र एक स्मृति बनकर रह गई है, लेकिन यह स्मृति जैसे ही उभरती है मैं फिर से उसकी कामना करने लगता हूँ। एक बार फिर इच्छा करती है कि चंद्री को आलिंगन में बांध लूँ। उत्तेजना जैसे ही उन्हें उद्वेलित करने लगी, आचार्य का शरीर चंद्री को देह स्पर्श के लिए बेहवल हो उठा। उनकी आंखें गीली हो गई। सोचा कि कुंदापुर जाऊं और चंद्री को खोज निकालूं। आत्मविश्लेषण में, जबकि सामान्यतः उनका तर्क वितर्क निर्विघ्न रहता था, उन्हें ऐसा लगा कि कहीं विघ्न पैदा हो गया है। तर्क विचार की तरंगे कहीं टकराकर टूट रही थी। यदि मैं उसकी तलाश में जाऊं और फिर से शारीरिक आनंद का भोग करूं, तब भी मैं अपने इस कृतित्व के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होऊंगा या नहीं। संभवतः तभी मैं अपनी इस व्यथा से छुटकारा पा सकूं। इस विचार से कि बिना किसी कारण एकाएक मैं अपने जीवन के मार्ग पर विपरीत दिशा में चलने लगा, तब मैं अपने सत्य के साथ स्वयं खड़ा होऊंगा। वह सत्य जो मेरे हाथों गढ़ा जाएगा, वह नया व्यक्तित्व जिसका निर्माण मैं स्वयं करूंगा, ताकि अपने प्रभु और अपने भविष्य की आंखों में आंखें डालकर मैं देख सकूं। मेरे व्यक्तित्व ने मेरे पिछले रूप को गवा दिया है, किसी नए रूप को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए गर्भाशय से समय से पूर्व निकाले गए राक्षसी पिंड की तरह बन गया हूं। बिना किसी भय के मुझे अपने इस विश्वास का भी विवेचन करना चाहिए कि जंगल के उस अंधेरे में वह घड़ी अनायास स्वयं में बिना मेरे किसी जाने मुझे जाने पूछे सहयोग के उपस्थित हो गई थी। यह सच है कि वह घड़ी एकाएक आ पहुंची थी। मैं उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए लालायित नहीं भागा था। फैले हुए हाथों ने उसकी छातियों का स्पर्श किया, लेकिन तभी कामना का जन्म हुआ। उस घड़ी का रहस्य भी उसी में छिपा है। वही एक घड़ी है जबकि मैं निर्णय कर सकता था कि जिंदगी में किस रास्ते को पकड़ूं। यही वह क्षण था जबकि मैं निर्णय ले सकता था कि अपने जीवन की दिशा को बदलूं या नहीं। यह उत्तर ठीक नहीं है कि ऐसा मेरे शरीर की स्वीकृति से हुआ, लेकिन अंधकार में मेरे हाथ उतावली से चंद्री की छातियों और जांघों को खोज रहे थे। उस उतावली से मैंने कभी धर्म की भी तलाश नहीं की। वह पल मेरी जिंदगी के उलट फेर के लिए निर्णायक पल था, और मैंने निर्णय लिया चंद्री से भोग विलास का। यदि मैं अपने आत्म नियंत्रण को भी खो चुका था, तो इसका दायित्व भी मुझ पर ही है। मनुष्य का कोई निर्णय इसलिए वैध होता है क्योंकि मनुष्य के लिए आत्म नियंत्रण को खो देना संभव होता है, इसलिए नहीं कि कोई निर्णय कर लेना आसान होता है। विभिन्न निर्णयों में से किसी एक का वर्णन करके ही हम अपने आप को शक्ल देते हैं, जिसे अपना व्यक्तित्व कहते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। नारप्पा जैसे जैसा व्यक्ति बना वह अपने स्वतंत्र निर्णय के कारण ही। मेरा निर्णय कुछ और बनने का था और उसके अनुसार मैं जिया भी, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई। अब मैं तब तक स्वतंत्र हो पाऊंगा जब तक यह नहीं मान लूंगा कि उस मोड़ पर मुड़ना भी मेरे द्वारा ही की गई एक प्रक्रिया थी और उसकी जिम्मेवारी मेरे ही कंधों पर है। जिंदगी में उस नए मोड़ को लेने के बाद क्या हुआ? जीवन के द्वंद्व और संघर्ष उभर आए। दो सत्यों के बीच त्रिशंकु की तरह मैं लटक गया। पुराने ऋषि लोग ऐसे अनुभव का सामना किस प्रकार किया करते थे? या बिना द्वंद्व और संघर्ष के वह महान ऋषि जिसने मछुआरिन मत्स्यगंधा को नाव की यात्रा में ही गर्भवती कर दिया था और व्यास ऋषि का पिता बना था, क्या उसे भी मेरी तरह ऐसे द्वंद्व को सहना पड़ा था? क्या तपस्या से कमाई हुई बड़ी पूंजी को एकाएक स्त्री की खातिर गवा देने पर ऋषि विश्वामित्र को भी इसी तरह कष्ट उठाना पड़ा था? जीवन को एक त्याग और बलिदान मानते हुए, परमात्मा का संग साथ बनाए रखते हुए, संघर्षों और अंतर विरोधों को उनके बीच में से गुजरकर उन पर विजय पाते हुए, उस हर परिवर्तन को स्वीकार करते हुए जो कि धरती उन्हें प्रदान करती है, और अंततः समुद्र में अपने रूप को गवा देने के लिए बहती हुई नदी की तरह वे जी सकते थे। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं परमेश्वर से इतने निकट का संबंध कभी नहीं बना सका। यदि कोई कभी उनके निकट रहा है, तो वह था उनका मित्र महाबल। मेरे बचपन के सब मित्रों में केवल उसी के मन में ईश्वर को पाने की गहरी भूख थी। हम अध्ययन के लिए एक साथ काशी गए थे। कैसी थी उसकी बुद्धिमता? लंबे छरहरे गोरे बदन का था महाबल। ऐसी कोई बात नहीं थी जो उसकी समझ और पहुंच के बाहर हो। गुरुजी अभी पहला पाठ ही पढ़ा रहे होते, वह अगला स्वयं बूझ लेता था। एक उसी के प्रति मेरे मन में जहां अथाह स्नेह था, अथाह ईर्ष्या भी थी। उसकी तुलना में मैं रूप और बुद्धि दोनों में कुछ कम ही पड़ता था। पारस्परिक मित्रता की इस भावना को इस कारण कहीं भी चोट नहीं पहुँचती थी। उसकी तुलना में मैं रूप और बुद्धि दोनों में कुछ कम ही पड़ता था। पारस्परिक मित्रता की इस भावना को इस कारण कहीं भी चोट नहीं पहुंचती थी कि जहां मैं माधव था वह स्मार्थ था। जबकि मैं माधव मत के प्रतिपादन में लगा रहता था, उसके लिए ईश्वर का साहचर्य ही सब कुछ था, शेष सब निरर्थक था। यदि कभी मैं तर्क करता कि ईश्वर की सत्ता के अनुभव के लिए भी क्या किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती, आत्मा और परमात्मा के द्वैत के बोध से ही उस समय उस तक पहुंचा जा सकता है, तो वह कहता, मार्ग से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? परमात्मा क्या कोई स्वर्ग या नरक या कोई गांव नगर है कि उसे खोजने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता हो? प्रभु तो जहां भी कोई खड़ा हो वहीं मिल जाने चाहिए। संगीत उसे तर्क और मीमांसा से भी अधिक प्रिय था। प्रभु कृष्ण संबंधी जब जयदेव के गीत को वह गाता, तो श्रोता मानो कृष्ण के कुंज में ही पहुंच जाता। ललित लवंग लता परसीलन कोमल मलय समीरे, गीत के सुर उसे उसके प्राणों की गहराई से उठा करते थे। अपने मित्र की याद आने पर प्राणसाचार्य की आवाज भारी हो उठी और गला रूंध गया। परमात्मा के लिए वैसे प्रेम का अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। अंत में महाबल का क्या हुआ, अभी वे दोनों काशी में ही थे कि वह अपने में सिमट के रहने लगा और उन दोनों में दूरी का भाव आ गया। समझ में नहीं आया कि क्यों मैं दुखी रहने लगा। पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता था। मेरा मित्र जो हमेशा मेरे साथ रहा करता था, अब मुझसे कटता था और जहाँ तहाँ घूमता फिरता था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्यों हो रहा है। महाबल को जितना मैं तब चाहता था, किसी को कभी इतना नहीं चाहा है। जैसे सिर पर एक पागलपन सवार था। कई कई दिन बाएं गाल पर काले तिल वाला उसका रक्त वर्ण मुख मेरी आंखों में छाया रहता और मैं उसके साथ के लिए तड़पता रहता। जब मैं उसके समीप जाता तो कोई ना कोई बहाना कर वह दूर छिटक जाता। एक दिन वह एकाएक ही लापता हो गया। पढ़ाई के लिए आना भी बंद कर दिया। उसे खोजने के लिए मैं काशी की गली गली छान मारी। मुझे यह भय भी सताता था कि किसी ने किसी विशेष क्रियाकांड के हेतु उसकी नर बलि ही न दे दी हो। एक दिन एक मकान के बाहरी चबूतरे पर वह बैठा मिला। मैं आश्चर्य से भर गया। वह अकेला बैठा था और हुक्का पी रहा था। इस दृश्य को ना सह सकने पर मैं उसकी ओर भागा और हाथ पकड़कर खींचकर उसे उठाने की कोशिश की। अपनी भारी आंखों को ऊपर उठाकर उसने कहा, प्राणेश तुम अपने रास्ते पर चले जाओ, बस इतना ही। मैंने उसे फिर बलात् उठाना चाहा। क्रोध में भरकर वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और बोला, सत्य जानना चाहते हो तुम, है ना? मैं अध्ययन मनन सब छोड़ दिया है। जानते हो किसकी खातिर अब जिंदा हूँ? भीतर आओ दिखलाऊं। मुझे ढकेल कर वह भीतर ले गया और दिन का भोजन करने के बाद गद्दे पर सो रही एक नवयुवती की ओर इशारा किया। वह सोई हुई थी बाहें फैलाए हुए, कपड़ों और मुंह की लिपा पोती से मुझे जान पड़ा कि वह कोई वैश्या है। मुझे बहुत हैरानी हुई, डर से मैं कांपने लगा। महाबल ने कहा, प्राणेश अब तुम जान गए हो, मेरी चिंता बिल्कुल ना करना और अब जाओ। असमंजस में डूबकर मैं चला आया। यह भी नहीं सूझा कि कहूँ तो क्या कहूँ। तब मेरा हृदय एकाएक पत्थर सा कठोर हो गया। एक प्रण करके मैं वहां से चला आया। इस पतित महाबल के रास्ते पर मुझे कभी नहीं चलना है। मैं सदैव इसकी विपरीत दिशा का राही रहूंगा। मैं जब कभी भी नारनप्पा को देखता तो मुझे महाबल याद आ जा करता। यद्यपि वे दोनों एकदम विभिन्न संसारों के वासी थे और एक दूसरे से उतने ही भिन्न थे जितना कि एक बकरी और एक हाथी। अब मेरी इच्छा होती है कि महाबल से मिलूं और पूछूं, तुमने अपना मार्ग स्वयं ही क्यों बदल लिया था? कौन से अनुभव, किस आवश्यकता, किस अदम्य कामना ने तुम्हें इस मार्ग पर बढ़ने को बाधित किया था? मुझे अब क्या सलाह मंत्रणा देते हो? क्या नारी और उसके द्वारा दिए गए सुख में तुम्हें संपूर्ण संतोष की प्राप्ति हुई है? तुम्हारी वह समृद्ध आत्मा क्या मात्र एक नारी से तुष्टि पा गई? आहा, अब जाना। प्रणेशाचार्य उठ खड़े हुए और चलने लगे। हाँ, इस बात की जड़ यही है। महाबल से मुझे निराशा हुई थी, वह मेरे मन में बनी रही। बिना ठीक से समझे मैं नारनप्पा में महाबल को देखता रहा हूँ। वहाँ जो मेरी पराजय हुई थी उसे नारनप्पा के मामले में मैंने विजय में परिवर्तित करना चाहा, लेकिन मेरी हार हुई, बुरी तरह हार हुई और मुझे मुँह की खानी पड़ी। जिसके विरुद्ध मैं सदैव संघर्षशील रहा, मैं स्वयं वही हो गया। परंतु क्यों, कहाँ, कैसे मैं पराजित हुआ? इस विश्लेषण में तो मानो हर बात और अधिक उलझ जाती है। देखो, एक बात दूसरी से कैसे जुड़ी है। महाबल से नारनप्पा, नारनप्पा से मेरा हट और वे पुराण गाथाएं जिनका मैं प्रवचन करता था, उनका प्रभाव चंद्री की छातियों के लिए, कैसे मैं स्वयं अंततः कामातूर हो गया। इन सबकी रूपरेखा परोक्ष में मेरे अनजाने में जाने कब से तैयार हो रही थी। मुझे संदेह है कि जब मैंने चंद्री से संभोग किया था, वह घड़ी भी स्वतः मेरे बिना चाहे आ खड़ी हुई थी। यह घड़ी वह रही होगी जबकि मेरे मन में छिपी हुई हर भावना अभिव्यक्त होने के लिए उत्सुक हो चुकी थी। भंडार गृह से कूद कर बाहर आने वाले चूहों की तरह अग्रहार फिर से मन की स्मृति में उभर आया और उन्हें मिटली सी होने लगी। जिस दुविधा का मैं सामना कर रहा हूँ, अग्रहार उसी का स्थूल प्रतिरूप बनकर अब मेरे सामने खड़ा है। मेरे जीवन के एक छोटे से पद के मुकाबले में एक विस्तृत अध्याय की तरह मेरे मन में अब एक बात ही स्पष्ट है कि मैं यहाँ से भाग खड़ा हूँ, शायद वहीं चला जाऊँ जहाँ की चंद्री रहती है। महाबल की तरह हो जाऊँ, उसी की तरह अपने जीवन का एक स्पष्ट मार्ग अपना लूं। इस दुविधा में और त्रिशंकु के समान जिंदगी से उबर सकूं। किसी परिचित द्वारा पहचाने जाने से पहले गुमसुम ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वे चल रहे थे और चलते चलते उन्हें लगा कि जंगल में उनके पीछे पीछे कोई चला आ रहा है। ऐसा लगा कि उसकी आंखें उनकी पीठ में धंसी हुई हैं। उन्होंने पीठ सीधी की और चलते रहे। घूमकर वह देखना चाहते थे कि कौन उनका पीछा कर रहा है, लेकिन डर भी लग रहा था। उन्होंने कोई आवाज़ सुनी और पलट के देखा कि कुछ फासले पर एक नौजवान कदम बढ़ाकर उनकी ओर चला आ रहा है। प्राणेशाचार्य तेज कदमों से चलने लगे। जितनी बार भी उन्होंने घूमकर देखा, वह नौजवान भी उसी तेजी से उनके पीछे चल रहा था। वे और भी तेज चलने लगे, लेकिन उस नौजवान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी तेज चाल से उनके और उसके बीच का फासला कम होने लगा। यदि वह कोई अपरिचित ना निकला तब क्या होगा? नौजवान लगातार उनके नज़दीक आता जा रहा था। प्राणेशाचार्य की टांगें थकने लगी थी और आखिर उन्हें अपनी चाल धीमी करनी पड़ी। नौजवान उनके साथ आ गया। हाँफते हुए वह उनके संग ही चलने लगा। कौतूहल से आचार्य ने उसकी ओर ताका। कोई अजनबी निकला। मैं मालेर, मालेर का मतलब ब्राह्मणों की एक निम्न जाति जो कि कुलीन ब्राह्मणों और उनकी अविवाहिता रखैलों से पैदा होती है। समाज प्रायः इनके प्रति सद्भाव नहीं रखता। मैं मालेर का पुत्र हूँ। मेलिगे के रथ यात्रा उत्सव को देखने के लिए जा रहा हूँ और आप, उस अपरिचित ने बातचीत करने के उद्देश्य से पूछा। प्राणेशाचार्य की इच्छा बातचीत करने की कतई नहीं थी। उत्तर क्या दे? जब यह नहीं सूझा तो उन्होंने नौजवान के चेहरे की तरफ देखा। कृष्णवर्ण चेहरा, कुछ मुरझाया सा, पसीने की बूंदें उस पर चमक रही थी। चेहरे पर लंबी नाक से वह दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता था। चेहरे पर उसकी पास पास गड़ी आंखें उसकी नज़र को पैना बना रही थी और उस नज़र से कोई भी व्यक्ति घबरा और झेप सकता था। सिर के बाल बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे और धोती के ऊपर किसी शहरी की तरह उसने कमीज पहन रखी थी। जब मैंने आपको पीछे से देखा तो आपकी चाल से ऐसा लगा कि जैसे मैं आपको जानता हूँ। अब भी आपके चेहरे को देखकर लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। यद्यपि किसी भी गांव के निवासी की तरह पुट ने बातचीत की शुरुआत की थी, फिर भी प्राणेशाचार्य अंदर ही अंदर घबराने लगे। मैं नीचे की घाटी में रहता हूँ, दक्षिणा वसूलने के लिए निकला हूँ, उन्होंने बातचीत का यह सिलसिला समाप्त कर देने के ढंग से कहा। हाँ हाँ, उस घाटी के तो अनेक लोगों से मैं परिचित हूँ। वैसे मेरे ससुर भी वहीं रहते हैं, मैं प्रायः वहाँ आया जाया करता हूँ। इस घाटी में आपका निवास स्थान ठीक कहाँ पर है? कुंदापुर में। अरे वाह, कुंदापुर? सच? क्या वहाँ की सिनप्या को आप जानते हैं? प्रणेशाचार्य ने कहा नहीं और अपनी चाल फिर तेज कर दी। लेकिन पुट तो बात करने के लिए बहुत उत्सुक था। बात यहीं समाप्त कर देने की उसकी जरा भी मर्जी नहीं थी। सिनप्या और हम में काफी घनिष्ठता है। मेरे ससुर जी का वह अच्छा मित्र है। उसी ने अपने दूसरे लड़की की शादी मेरी पत्नी की छोटी बहन से करवाई थी। हूं करके प्रणेशाचार्य ने अपनी चाल बढ़ा दी, लेकिन उनके साथ चल रहा संगी इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। यह सोचकर कि वह अपने काम से मतलब रखेगा, थक जाने के व्यास से आचार्य एक वृक्ष की छाया तले बैठ गए। पुट को मानो इससे भी प्रसन्नता ही हुई। वह भी एक लंबी सांस लेकर वहीं बैठ गया। जेब से उसने बीड़ियां और माचिस निकाली और एक बीड़ी प्राणेशाचार्य की ओर बढ़ाई। यह कहकर कि वह नहीं पीते, उन्होंने बीड़ी नहीं ली। पुट ने अपनी बीड़ी सुलगाई, यह दर्शाते हुए कि उनकी थकान जल्दी ही कम हो गई है। वह उठ खड़े हुए और फिर चलना आरम्भ कर दिया। पुट भी उठ खड़ा हुआ और उनके साथ हो लिया। बात यह है कि यदि लंबे रास्ते पर कोई बातचीत करने के लिए मिल जाए तो रास्ते का पता भी नहीं चलता। मुझे तो खासकर हमेशा ही किसी के साथ की तलाश रहती है जिससे बातें करता चलूं। पुट ने मुस्कुराते हुए और प्राणेशाचार्य की ओर कुछ विस्मय भाव से देखते हुए कहा। आचार्य की पत्नी के दाह संस्कार के और जिधर उनके पांव ले जाएं उधर ही चल देने के उनके निश्चय के कुछ ही घंटों के भीतर परिजातपुर के लोगों को सब कुछ पता चल गया। इसके सिवाय कि नारनप्पा का अग्नि संस्कार वास्तव में किसी मुसलमान के हाथों हुआ है। परिजातपुर के वे नवयुवक जिन्होंने की विरोचित भावों के जागृत होने के एक क्षण में अपने मित्र नारनप्पा की अंत्येष्टि स्वयं करने का निश्चय किया था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए थे, एकदम चुप्पी लगा गए। जो कुछ उन्होंने देखा था उसे किसी से कहा नहीं। मंजैया को जिस बात ने सबसे अधिक चिंतित किया था वह थी एक के बाद दूसरी हो रही मृत्यु। सबसे पहले नारनप्पा, फिर दासाचार्य, फिर प्रणेशाचार्य की पत्नी। इस श्रृंखला का एक ही अर्थ था, महामारी। जैसा अनुभवी और व्यवहार में वह दक्ष था, मंडियों में, कोर्ट कचहरियों में, शिवमोग्गे के दफ्तरों में उसे ब्राह्मणी द्वारा बतलाए गए मृत्यु के इन कारणों पर दया और हंसी ही आ रही थी। उन ब्राह्मणों का विश्वास था कि जो कुछ घट रहा है उसका कारण केवल नारनप्पा का अकाल देहावसान नहीं है, और फिर उसे सबका उचित दाह संस्कार संपन्न करने में ब्राह्मणों के कर्तव्य की चूक। मंझैया ने बेशक इतना जरूर कहा, कितने अफसोस की बात है कि दासाचार्य चल बसा। परसों ही तो वह उनके घर आकर उपमा खाकर गया था, लेकिन मंझैया इस बात से भयभीत भी था कि उसी ने ही तो उस ब्राह्मण को अपने घर में प्रवेश करने दिया था। जैसे ही उसने बताया कि नारनप्पा की मृत्यु से मोगे से लौटने पर तेज बुखार और पेट के निचले भाग में निकली हुई एक गिल्टी के कारण हुई है, उसे संदेह होने लगा था। अब तो वह इस विकराल बीमारी का नाम तक लेने में डर रहा था, क्योंकि आगे आकर लोगों की नजर में आए उसने सोचा। लेकिन जब उसे पता चला कि चूहे अग्रहार से भागकर चारों दिशाओं में दौड़ रहे हैं और बीच में मरकर गिर जाते हैं, वह मांस भक्षी पक्षी उन्हें खाने के लिए जमा हो गए हैं, तो उसका संदेह विश्वास में बदल गया। उसका अनुमान 16 आने सच ही निकला। कल ही तो तायनाडु पत्र का जो अंक उसे देखने को मिला था, जो कि एक सप्ताह पुराना था, उसके एक कोने में यह खबर छपी थी, शिवमोग्गा में प्लेग। नारनप्पा ही प्लेग की महामारी को अग्रहार में ले आया था, और यह बला तो बड़वानल की तरह देखते देखते फैलती है। इतने समय तक महामारी के विरुद्ध कोई भी कदम न उठाकर, अंधविश्वासों से चिपटे रहकर और मृत नारनप्पा का दाह संस्कार न करके इन लोगों ने मानो अपने ही सिरों पर चट्टानों को गिरा लिया था। वह स्वयं भी तो कुछ कम मूर्ख नहीं निकला। बाहर बरामदे में खड़े होकर उसने चिल्लाकर कहा, बैलगाड़ियां जोत के तैयार करो एकदम, अब एक क्षण भी गंवाने का समय नहीं है। किसी भी समय प्लेग की हवा नदी पार कर देगी और उनके अग्रहार में भी घुस जाएगी। प्लेग से मरे किसी चूहे को चील या गिद्ध उनकी तरफ चोट से गिरा गया, इतने से ही सर्वनाश हो सकता है। वह घर के बाहर खड़े होकर जोर से बोलकर मानो सबको सुनाने लगे, जब तक मैं शहर से लौट ना आऊं, कोई भी दुर्वासापुर के पास भी ना फटके। अग्रहार में अग्रणी के रूप में उसके हृदय ने वहां के लोगों को प्लेग की बात कहकर डराना उचित नहीं समझा। बैलगाड़ी तैयार हो गई थी। भीतर रखे एक तकिए से टेक लगाकर वह बैठ गया और गाड़ीवान को तीर्थहल्ली की ओर बैलों को हांकने के लिए कहा। उसकी यथार्थवादी सूझबूझ में सब योजना पहले ही तैयार हो चुकी थी। एक नगरपालिका को कहना और सबको वहां से उठवा देना, दो डॉक्टरों को जुटाना और हरेक को प्लेग से बचाव का टीका लगवाना, तीन चूहों को मारने वालों को बुलाना, चूहों के बिलों में पंपों से जहरीली गैस भरवा के बिलों के मुखों को पाट कर देना, चार आवश्यकता समझी जाने पर अग्रहार के सब निवासियों को वहां से हटवा देना। काफी देर तक मंत्र जाप की तरह वह दोहराता रहा, मूर्ख महामूर्ख, और इसी के साथ गाड़ीवान को भी बैलों की दुम मड़ोड़कर उन्हें तेजी से भागने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। बैलगाड़ी तीर्थहल्ली की सड़क पर बढ़ी जा रही थी। मठ से कुछ निराशा के साथ निकलते हुए और हरी हरी नामोच्चारण करते हुए गरुड़ाचार्य, लक्ष्मणाचार्य और अन्य ब्राह्मण अग्रहार लौट आए। पद्मनाभाचार्य तेज बुखार में बिस्तर पर लेटा हुआ था। जब वे अग्रहार पहुंचे तो वह बेहोशी में था। उन्हीं में से एक मायके गई हुई उसकी स्त्री को उसकी हालत के बारे में बताने के लिए गया, दूसरा डॉक्टर को बुलाने के लिए शहर की ओर दौड़ा। गरुड़ाचार्य त्रस्त हो गए। मठ में बुखार ने गुंडाचार्य को धर दबोचा था। कैमर में दासाचार्य ज्वरग्रस्त होकर पड़े थे। यहाँ पद्मनाभाचार्य की जीभ मुंह से लटक रही थी। अग्रहार पर कोई भीषण खतरा मंडरा रहा था। सभी के सामने लक्ष्मण ने गरुड़ को नारनप्पा के दाह संस्कार में रुकावट डालने की खातिर गालियां दी, लेकिन इसकी किसी ने परवाह नहीं की। संकट का यह समय परस्पर गाली गलौज का नहीं है। सबको मिलकर शीघ्र से शीघ्र दाह संस्कार निपटा देना चाहिए और मृत की सारी संपत्ति दंड स्वरूप प्रभु के प्रति समर्पित कर देनी चाहिए। अनिच्छा से रुग्ण पद्मनाभाचार्य को वे वहीं छोड़ गए और निकल पड़े। गरुड़ ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वे मठ के वैद्य को साथ लेकर चले और वहां असहाय पड़े गुंडाचार्य की औषधि का प्रयत्न करें। रास्ते में किसी को एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं हुआ। एक निरुत्साह सा पर्दे की तरह उन पर पड़ गया था। गरुड़ मन ही मन मारुति से प्रार्थना कर रहा था, मैं अवश्य ही दंड भरूंगा, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना। भारी मन से वे कैमर जा पहुंचे और वहां जाकर क्या देखा सुना? दासाचार्य की काया के फूल और भस्म। प्रणेशाचार्य की पत्नी की मृत्यु का समाचार सुन वे हक्के बक्के रह गए। उनके रोज के जाने पहचाने संसार में यह कैसी उथल पुथल मच रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि अंधेरे में उन्हें पिशाच दिखलाई पड़ रहे हैं। बच्चों की तरह दीवारों का सहारा लेकर वे आंसू बहाने लगे। उन सब में अग्रज सुब्रणाचार्य ने उन्हें संतावना और साहस देने की कोशिश की। काफी देर से निश्चेष्ट बैठे गरुड़ ने महीन आवाज में पूछा, क्या चूहे अब भी मर रहे हैं? सुब्रणाचार्य ने कहा, इससे आपका मतलब क्या है? कुछ नहीं, गरुड़ाचार्य ने उत्तर दिया, गिद्ध अभी भी घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। सुब्रणाचार्य ने कहा, उठो, दाह संस्कार पूरा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरुड़ाचार्य ने कहा कि वे तो अग्रहार में प्रवेश नहीं करेंगे। बाकी ब्राह्मणों में भी कानाफूसी शुरू हो गई, सड़े हुए सब का संस्कार कैसे हो सकेगा? चार गाड़ी भर लकड़ियां भी इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगी। लक्ष्मणाचार्य ने कहा, फिर भी चलना तो उचित ही है। गरुड़ाचार्य ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, आप में से कोई भी संस्कार कर करा दे। इस पर सुब्रणाचार्य बोले, यदि आप जैसे प्रौढ़ और अनुभवी व्यक्ति भी इस प्रकार भयग्रस्त और भ्रांत हो जाएंगे तो अन्य लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? गरुड़ाचार्य ने फिर हठपूर्वक कहा, मैं तो कतई कुछ नहीं कर सकूंगा। लक्ष्मणाचार्य ने उसे फिर से प्रेरित करने का यत्न किया, अग्रहार में कोई भी तो नहीं है, हम लोगों की गायों बछड़ों का क्या होगा? वहां उन्हें गौशालों में बांधने वाला दूध दुहने वाला भी कोई नहीं है। शेष ब्राह्मणों ने एक राय से कहा, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। हरि हरि का नाम लेते हुए वे सब चलने के लिए तैयार हो गए। रास्ते भर राघवेणु स्रोत का पाठ करते रहे। बड़ी मनौती वाले पिशाच को उन्होंने एक मुर्गी की बलि दी और एक मनौती यह भी मनाई कि अगली अमावस्या को एक बकरे की बलि चढ़ाएंगे। फिर भी बेली के माता और पिता दोनों उसी रात चल बसे। जिस रात को प्राणेशाचार्य की पत्नी की मृत्यु हुई थी, बेली की कातर चित्कार को सुनकर आस पड़ोस के जातिहीन लोग बेली के पास जमा हो गए। उनके काले प्रायः अध नंगे शरीर उस कुटिया को चारों ओर से घेरे हुए बैठे थे और आधा घंटे के लगभग अंधेरे में उसके साथ रोते रहे। तब ताड़ के सूखे पत्तों से छती उस झोपड़ी को आग लगा दी गई। देखते देखते आग की धधकती लपटें आसमान तक उठने लगी और बेली के माता पिता को भी चट कर गई। बेली जो अब तक वहां खड़ी इस अग्निकांड को देख रही थी, भयातुर होकर गांव से भागते हुए चूहों की तरह ही दिशाहीन अंधेरे की ओर दौड़ गई। मालेर का पुट प्रणेशाचार्य के पीछे ही लगा रहा, अतीत के उनके किसी पाप की तरह। जब वह रुकता तो वह भी रुक जाता, बैठते तो बैठ जाता, तेज कदमों से चलते तो वह भी अपनी गति तेज कर देता, धीमे होते तो वह भी धीमे चलने लगता। उनका साथ छोड़ने के लिए वह तैयार ही नहीं था। प्रणेशाचार्य की परेशानी इससे बढ़ रही थी। उन्हें कहीं नितांत अकेला होने की इच्छा हो रही थी। आंखें मूंद करके ध्यानस्थ होने की और अपने बारे में तटस्थ भाव से सोचने की, लेकिन यह पुट अविरोध गति से बड़बड़ाया जा रहा था। आचार्य उसकी ओर एक बार भी उन्मुख नहीं हुए, फिर भी वह मानो उनसे चिपचा हुआ है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि वेदांत शिरोमणि प्रणेशाचार्य यही है। उसका व्यवहार भिक्षा और दक्षिणा लेने के लिए निकले एक सामान्य ब्राह्मण के प्रति जैसा है। आचार्य ने उसने कहा, कितना लंबा रास्ता नंगे पांव नहीं चलना चाहिए। बताया कि तीर्थली में हाथ से सिले हुए चप्पल 3 रुपए में ही खरीदे जा सकते हैं। उपदेशात्मक आवाज में उसने पूछा, पैसा या आराम, इनमें कौन सी बात ज्यादा महत्व की है? मेरी चप्पलें देखिए, 1 साल से ज्यादा पुरानी है लेकिन जरा भी नहीं घिसी। उसने चप्पलों को पैरों से उतारा और आचार्य को दिखलाया। उसने कहा, बातें करते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आइए मैं एक बुझवल कहता हूँ। उसने चुनौती भरे स्वर में कहा, आप उसका हल बताइए। प्रणेशाचार्य अपने उफनते हुए क्रोध को वश में करने की चेष्टा में मौन साधे रहे। एक नदी, एक नाव और एक खिवैया, खिवैये के पास घास की एक गठरी भी है और साथ है एक चीता और एक गाय। इनमें केवल एक को साथ लेकर ही एक बार वह नदी पार कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं गाय घास न चर जाए या चीता गाय को न मारकर खा ले। नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पर सभी को पहुंचाना भी है। बताइए यह सब वह कैसे करेगा? देखे कि आप कितने बुद्धिमान और तेज हैं। पहेली को सुनाकर मौज से उसने एक बीड़ी सुलगाई। यद्यपि आचार्य का क्रोध अभी कम नहीं हुआ था, पहेली उनके दिमाग को खिंचाने लगी। पुट साथ ही बढ़े जा रहा था और अब आचार्य का मजाक भी उड़ाने लगा। मिला जवाब मिला, यद्यपि प्राणेशाचार्य को उत्तर सूझ चुका था, लेकिन उसे सुनाते हुए उन्हें झेप सी हुई। यदि पहेली को वे बूझ लेते हैं तो मानो पुट की तरफ मैत्री का हाथ बढ़ा देते हैं, और यदि चुप रहते हैं तो पुट उन्हें कम अक्ल का मान लेगा। यह एक नई दुविधा पैदा हो गई। इस पुट की नजरों में क्या वे बुद्धिहीन व्यक्ति बनना स्वीकार कर ले? पुट ने फिर पूछा। जवाब नहीं मिलाना और बीड़ी के कस लगाता रहा। प्राणेशाचार्य ने सिर हिलाकर कह दिया कि नहीं। पुट ठट्ठा मार के एक बारगी हंस उठा और तुरंत पहेली का हल बतला दिया। इस भोले लेकिन अदक्ष ब्राह्मण के प्रति उसे बड़ी ममता हो आई। अब सुनो एक दूसरी पहेली, उसने कहा। नहीं नहीं, प्राणेशाचार्य ने कहा, तो ठीक है, आप ही कोई पहेली बूझिए। इस बार आप मुझे हरा दीजिए, जैसे को तैसा हो जाए। आचार्य ने कहा, मुझे तो पहेलियां बुझाना आता ही नहीं। बेचारे, पुट ने मन में कहा। बातचीत का कोई नया सिलसिला छेड़ने के लिए उसकी जीभ खुजा रही थी। उसे एक नया विषय सुझा। आचार्य जी, जानते हैं आप, श्याम जो कुंदापुर की नाटक मंडली का सदस्य था, बेचारा मर गया है। आचार्य ने उत्तर दिया, हरे राम, मुझे नहीं पता था, तब तो आपको गांव छोड़े बहुत दिन बीत गए होंगे। पुट ने कहा। सामने रास्ता दो टुकड़ों में बट रहा था। यह देखकर आचार्य को बड़ी खुशी हुई। रुककर उन्होंने पुट से पूछा, तुम किस रास्ते पर जा रहे हो? एक रास्ते की तरफ संकेत करते हुए पुट ने बतलाया, इस पर। आचार्य ने दूसरे रास्ते की तरफ उंगली उठाकर कहा, मेरा रास्ता तो वह है। पुट ने कहा, दोनों रास्ते ही मेलिगे की ओर जाते हैं, एक जरा बड़ा पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी कौन सी जल्दी पड़ी है, मैं भी आप ही के साथ वाला रास्ता पकड़ लेता हूँ। उसने गुड़ और नारियल के कुछ टुकड़े निकाले और उनमें से एक हिस्सा प्राणेशाचार्य को देता हुआ बोला, लें, थोड़ा खा लें, और से स्वयं खाने लग गया। आचार्य को भी भूख सता रही थी और पुट के प्रति उनमें कृतज्ञता का भाव भर आया। वे जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी उनसे घटता है, मानव संपर्क उनसे इस तरह चिपटा रहता है जैसे पिछले जन्म के उनके कर्मों का फल हो। अब पुट की बातें गुड़ और नारियल खाते हुए अधिक अतरंग क्षेत्र के संबंधों तक उतर आई। आप अवश्य ही विवाहित होंगे, ठीक है ना? कौन विवाह नहीं करता? मैंने भी कैसा मूर्खता भरा प्रश्न किया भला, बच्चे कितने हैं? कोई भी नहीं। खेद है, मेरे दो बच्चे हैं। मैंने आपसे बताया था या नहीं कि मेरी पत्नी भी कुंदापुर की है? एक बात आप देखिए, पता नहीं इस बात को सोचकर हंसना चाहिए या रोना। वह अपने माता पिता को बहुत प्यार करती है। प्रायः हर महीने या कम से कम 2 महीने में एक बार तो जरूर मायके जाने के लिए हो हल्ला मचाती है। इन दिनों में बस गाड़ी का 2 रुपए का भाड़ा बार बार कौन खर्च कर सकता है, कहिए तो। लेकिन वह एक भी नहीं सुनती। 2 बच्चों की माँ बन चुकी है, फिर भी बचपना नहीं गया। लेकिन वास्तव में उसकी उम्र भी तो अभी ज़्यादा नहीं है। मेरी सास एक महाझगड़ालू औरत है, लेकिन ससुर का दिल बहुत बड़ा है। ठीक कहता हूँ आपसे, आखिरकार दुनिया देखी है उसने। मेरी सास कभी कभी कहती है, मेरे जमाता को क्या अधिकार है कि मेरी बेटी को मारे पीटे। लेकिन मेरे ससुर ने इस ओर कभी इशारा भी नहीं किया, एक बार भी नहीं। मार खा खा कर भी मेरी पत्नी किंतु कुछ भी नहीं बदली। यदि उसे उसकी माँ के पास जाने देने से इनकार करूँ तो कुएं में कूद मरने की धमकी देती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? वह इतनी साफ सुथरी है और हर चीज़ की इतनी जानकारी रखती है। बस कमी है तो बस ये एक, यही खाना बनाने में या बर्तन बासन मांजने में वह सफाई का बहुत ही ध्यान रखती है। बस इसी बात को लेकर झगड़ा फसाद चलता रहता है। बताइए, मुझे कुछ सलाह दीजिए। प्राणेशाचार्य हंस दिए। उन्हें कहे कि यह नहीं सूझा कि क्या सलाह दी जाए। पुट भी हंसने लगा। स्त्रियों के स्वभाव को जान पाना तो पानी में इधर से उधर तैरती हुई मछली के मार्ग को पहचान लेने के बराबर है। हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा ही बताते हैं, उसने कहा। वे बखूबी जानते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक, प्राणेशाचार्य ने अपनी सहमति जताई। आखिरकार पुट की वाग्धारा रुकी गई। आचार्य ने सोचा, किसी शब्दातीत लोक में अपनी पत्नी के व्यवहार द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर खोजने में लग गया होगा। अब मेरी अनभूझ पहेली यह है, मैंने पहले उस पर कभी गौर नहीं किया। मेरे जीवन के निर्णयात्मक क्षण में, वह क्षण जो मेरे प्रत्येक संबंध की व्याख्या कर सकता है, नारनप्पा से, महाबल से, मेरी पत्नी से, अन्य ब्राह्मणी से, उस समूचे धर्म से जिस पर कि मैं इतना आश्रित हूँ। मेरे अपने किसी भी प्रयास के बाद के बिना जन्म ले लिया था। जंगल के अंधेरे में एकाएक मैं पलट गया।